जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता की जय गौर निताई की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल हरी हरी बोल हरी हरी बोल शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ जय श्री कृष्णा न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर हरि हरि बोल एवरीवन हरि हरि बोल जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव जय माता की। तो फ्रेंड्स आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी बुद्धि में विराजमान हो अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं ताकि हम सब उनकी वाणी को उनके इंस्ट्रक्शंस को उनके गीत को ठीक से समझ सके और अपने जीवन में अपना भी सके, है ना। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि हम सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और इस प्रक्रिया में सरल भगवद गीता का कोर्स हमारा आरंभ हो चुका है ना, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है ये कोर्स सरल भगवद गीता का हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। तो भगवद गीता का कोर्स स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स हमने कुछ मिसकंसेप्शंस पे बात की थी, है ना। तो आजकल हम गोलोक एक्सप्रेस द्वारा निर्मित कुछ मॉडल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने किया था कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस मॉडल, उसमें हमने समझा था कि कंप्लीटली हैप्पी होने के लिए हमें कंप्लीटली हेल्दी होना इम्पॉर्टेंट है। और कंप्लीटली हेल्दी कैसे हो सकते हैं हम, कंप्लीटली हेल्दी होने के लिए फ्रेंड्स हमें स्पिरिचुअल हेल्थ मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ फैमिली हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ में बैलेंस बनाकर चलना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आधार है ना स्तंभ है ना जो वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य स्पिरिचुअल हेल्थ है हमारी सारी हेल्थों का आधार। और हमने समझा था कि आत्मा की सेहत के लिए आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें फोर पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ यानी अध्यात्म के चार स्तंभ को समझना पड़ेगा। इसको कैसे बेटर कर सकती हूँ मैं अपनी आध्यात्मिक सेहत को अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को, उसके लिए हमें फोर पिलर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ गोलोक एक्सप्रेस द्वारा निर्मित नेक्स्ट मॉडल अध्यात्म के चार स्तंभ को समझना पड़ेगा जो कि हमने कल स्टार्ट किया था, है ना। वो चार स्तंभ है वो चार पिलर्स हैं सत्संग साधना सेवा और सदाचार। कल हमने सत्संग पे डिटेल में समझा था, है ना, कि क्या होता है सत्संग। दो शब्दों से मिलकर बना है सत्संग, है ना। एक है सत और दूसरा है संग। सत मतलब सत्य और संग का मतलब है साथ एसोसिएशन। तो सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ समय बिताना या सत्य संग, है ना। उसमें हम क्या करते हैं, इसमें लोग मिलकर आपस में सत्य की बातें करेंगे, प्रभु के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में बात होती है, भजन गान और हम आध्यात्मिक ज्ञान को सुनते हैं, है ना। और सत्संग के द्वारा क्या होता है, सत्संग के माध्यम से पॉजिटिविटी आती है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आती है और समाज में आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है, हमें समझ आती है चीजें। सत्संग एक बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है ना, जहाँ लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, क्लैरिटी मिलती है और इनर पीस मिलती है, है ना। और सत्संग आप कहीं भी कर सकते हो, चाहे आप यूट्यूब पे स्पिरिचुअल वीडियोज देख रहे हो, अच्छे वीडियोज देख रहे हो, है ना, जहाँ पे आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, व्हाट्सएप पर फेसबुक पर भी भगवान से जुड़े अनुभव भी अगर आप पढ़ रहे हो, है ना, संग कर रहे हो आप सत्य का, सत्य का, है ना, आप फालतू के बातों में नहीं उलझ रहे हो, आप भगवान से जुड़ी बातें सुन रहे हो, तो वो सत्संग ही है, अलग अलग प्रकार का सत्संग। फिर हमने समझा था कि सत्संग के माध्यम से हमें एक राइट डायरेक्शन मिलती है, है ना, समझ आता है कि हमें करना क्या है, कैसे आनंद और पीस को पाया जाता है, परमात्मा और अपना संबंध हमें जानना है, अपने बारे में समझ आते हैं कि हम एक्चुअली हम हैं क्या, हमारे अंदर कितना कुछ चल रहा है और हम दूसरों में घुसे होते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हमें ये जानना है, हमें हमारे अंदर क्या चल रहा है हमें उसके बारे में नहीं जानना है ना। अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है ना, अपने जो नेगेटिव हैबिट्स हैं उनको कैसे इम्प्रूव करना है ना, यहाँ तक हम पहुंचते हैं सत्संग के माध्यम से, है ना। जो दूसरों के बारे में सोचते रहते थे अब फिर हम सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर देती हूँ, कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ अपनी लाइफ को, मतलब ऐसी चीजें करूँ कि मैं अपनी लाइफ को बेटर कर सकती हूँ। है ना, पहले कैसा लगता था कि पहले जिंदगी जैसे चलाए रखते हैं वैसे चलते रहते हैं। बहुत कम लोग हैं कि जो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, कैसे अपनी लाइफ बदल सकती हूँ, दूसरा मेरे साथ ऐसी बातें करता है या दूसरे ने मेरे साथ ऐसे किया। है ना, सत्संग के माध्यम से हम जान पाते हैं कि मैं खुद कैपेबल हूँ, मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को मैं खुद डील कर सकती हूँ। ये लाइफ मेरी है तो उसकी प्रॉब्लम्स को भी मुझे डील करना है। है ना, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं। है ना, कितने सारे प्रश्न होते हैं कि हम अपने दुखों से दुखी रहते हैं, एक्चुअली मैं हूँ कौन, है ना, मैं कहाँ से आई हूँ, या डेथ के बाद क्या लाइफ होती है। ना बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स हमें कहीं नहीं मिलते, उनके आंसर्स हमें सत्संग से मिलेंगे। है ना, हमारा मन जो दुनियादारी में खोया हुआ है उसको कोई रुचि नहीं है डिवोशनल एक्टिविटीज में या भक्ति करने में। अगर फ्रेंड्स किसी की थोड़ी सी भी श्रद्धा है ना भगवान, है ना, और अगर वो आधे अधूरे मन से भी सत्संग करने बैठ जाएगा ना कि चलो मैं ये सुन ही लेता हूँ कि भगवद गीता में ऐसा क्या लिखा हुआ, या चलो देख लेता हूँ अटेंड करके, या देख लेती हूँ कि इसमें क्या बताया जा रहा है, ऐसा सत्संग में ऐसा क्या बताया जा रहा है, ये तो वही नॉर्मल सत्संग होगा जो जैसे मैं मंदिरों में जाती थी, लोगों के घर में जाती थी, है ना, खा पी के आगे और बस आके फिर ज्यादा ज्यादा बात कर दी कि हाँ उन्होंने क्या क्या नेगेटिव चीजें मैंने वहां पे देखी, बस उसके बारे में डिस्कस करते हम घर आके, फिर कि मंदिर में क्या क्या कमी थी, घर में क्या क्या कमी थी, है ना, लोगों ने क्या कपड़े पहने हुए थे, क्या क्या खाना खाना है या क्या खाना नहीं बना था, वैसे सत्संग होगा यहाँ भी। है ना, तो अगर आप ये सोच के अगर आप आधे अधूरे मन से भी आते हो ना कि चलो देख लेते हैं सत्संग में ऐसा क्या बोला जा रहा है ना, तो 6 महीने साल भी अगर आपने इसमें लगा लिए तो आपको अपने आप ही इसमें रुचि डेवलप हो जाएगी। है ना, आपको अपने आप ही समझ आना शुरू हो जाएगा कि यार सच में कुछ तो है कि जो मुझे कर लेना चाहिए, ऐसी कुछ बातें बताई जा रही हैं, है ना, जो मेरे ही बेनिफिट के लिए है ना, तो मुझे कर लेनी चाहिए। पीस और हैप्पीनेस मिल जाएगी, मोटिवेशन मिल जाती है, दूसरों के रिव्यूज सुनते हम तो मोटिवेशन मिलती है कि यार मुझे भी कुछ कर लेना चाहिए लाइफ में, मुझे भी जो बातें बोली जा रही है मैं मेरे को भी अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, चलो मैं देखती तो हूँ करके क्या होता है, कुछ गलत तो नहीं होगा ना, अच्छा ही होगा जो होगा, है ना। और सत्संग के दौरान ही डिवोटीज को दिव्य अनुभव होने लग जाते हैं, क्योंकि सत्संग में उन्हें बिना पूछे बिना कुछ बताए उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सत्संग मतलब कुछ ऐसा ऐसा संग, एक बच्चा मान लो उसमें स्कूल चला गया अपनी स्पिरिचुअल स्टडीज करने, है ना, या समझ लो उसने ट्यूशन क्लास ले ली अपनी स्पिरिचुअल स्टडीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा स्कूल गया, ट्यूशन क्लास ले ली एक बच्चे ने, तो साथ में बच्चे को कुछ करना पड़ेगा ना कि बस हो गया, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना उसको, खाली ट्यूशन चले जाने से स्कूल जाने से थोड़ी कुछ होगा, है ना, एनफ नहीं है ना ये। फिर उसके साथ उसको होमवर्क भी करना पड़ेगा, घर पर आकर उसको पर्सनल टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, है ना, जो उसने पढ़ाया स्कूल में ट्यूशन में उसको अंदर घुसाने के लिए उसको पर्सनल टाइम देना पड़ेगा ना, लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो जो पर्सनल अपना समय देना है ना भगवान के रास्ते में बढ़ने के लिए, फ्रेंड्स उसको ही साधना कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जो पर्सनल टाइम अपना समय देना है भगवान के रास्ते में बढ़ने के लिए उसको ही साधना कहते हैं। मतलब जो आपने सत्संग से सीखा, मान लो सत्संग एक कोचिंग क्लास है या स्कूल है, तो जब आप यहाँ से कुछ सीखते हो, है ना, आपको लगा कोई बात आपने सीखी, आपने सोचा कि चलो यार मैंने कुछ सीखा, है ना, तो उसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हो ना, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को कर लेना चाहिए, उसको ही साधना कहते हैं। साधना मतलब प्राइवेट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, है ना, जिसकी हम आज डिटेल में बात करेंगे। सेवा, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण के लिए कार्य करना जो नेक्स्ट कंपोनेंट है ना, अपने आप को निमित्त मात्र जानकर। और स्पिरिचुअलिटी का नेक्स्ट स्तंभ है सदाचार। सदाचार मतलब अपने आचरण में पॉजिटिविटी लाना, अपने बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लाना, है ना, और सबके साथ पॉजिटिव बिहेव रखना। ये चार चीजें जब हम बैलेंस में करते हैं ना तो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है, है ना, ये है अध्यात्म के चार स्तंभ, है ना। तो कल हमने सत्संग पे बात की थी, आज हम साधना के बारे में बात करने वाले हैं। तो साधना वर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स आध्यात्मिक अभ्यास या अनुशासन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और डिसिप्लिन, और जिसका उद्देश्य हमारा आध्यात्मिक विकास है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, जो हायर पावर है, डिवाइन है ना, परमात्मा है, उनसे संबंध स्थापित करना होता है। मतलब सिंपल वर्ड में फ्रेंड्स साधना उन प्रयासों का नाम है जो व्यक्ति को उच्चतम स्थिति तक पहुंचाने में हेल्प करती है, मदद करती है। आज हम जहाँ पे है ना, फालतू दुनियादारी में उलझे हुए हैं, नेगेटिविटी में फंसे पड़े हैं, अपने डेमोनिक क्वालिटीज में उलझे हुए हैं, है ना, तो साधना हमें वहां से उठाकर डिवाइन के साथ जोड़ने का काम करती है, उच्चतम स्थिति तक पहुंचाने में हमें मदद करती है। और किसको डिसिप्लिन करने की बात हो रही है यहाँ पे फ्रेंड्स, जो हमारा मन है ना, उसका नेचर होता है दुनियादारी में कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते रहना हमेशा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही वैसी हुई होती है बचपन से लेकर आज तक। और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मतलब है, आध्यात्मिक प्रगति का मतलब होता है मन को भगवान की ओर लगाना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहना, है ना, क्योंकि भगवान पॉजिटिविटी के सागर है ना। तो अगर हमें पॉजिटिव रहना है, जहाँ पे हम हैं हमें लगता है कि नहीं हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है ना, जो कि मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य है ना, तो उसके लिए हमें भगवान से जुड़ना ही पड़ता है फ्रेंड्स, हायर पावर से जुड़ना ही पड़ता है। तो क्या ये एकदम हो जाएगा कि सडनली हम उठेंगे है ना, आज हमने सोचा बहुत अच्छा सत्संग लगा, तो क्या एकदम हो जाएगा? कल आपने सत्संग सुना मान लो है ना, अध्यात्म का जो एक स्तंभ था, सत्संग के बारे में बात की है ना, आपने सुना, तो क्या एकदम हो जाएगा वो सब कुछ जो भी आपने सुना, या आप अभी आप जो सुन रहे हो, तो क्या सब चीजें एकदम हो जाएंगी कि सडनली हम उठेंगे और हमारा मन नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ या भगवान की तरफ चला जाएगा? है ना, सुनने में तो अच्छी लगती है हमें सारी बातें, हमें ये नहीं लगेगा कि नहीं यार कुछ गलत बोल रहे हैं, या हमारा मन का होता है कि यार करेंगे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, हमारा मन ये सोचता रहता है ना। और सडनली ऐसा कुछ होगा भी नहीं कि आप एकदम सोचोगे तो मैं पॉजिटिव ही सोचूंगी, नेगेटिव कुछ सोचूंगी ही नहीं, है ना, वो सोचने से थोड़ी होता है फ्रेंड्स, या मुझे भगवान की तरफ ही ध्यान लगाना है, वो सोचने से थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि मन तो एक बहुत ही शरारती बच्चे की तरह होता है, अभी कुछ सोच रहा है, सेकंड्स में कहीं और सोचने लग जाएगा, है ना। अभी आप सुन रहे हो तो कई सभी लोग ध्यान से थोड़ी सुन रहे होंगे, कई लोग व्हाट्सएप पे लगे होंगे, कई लोग फेसबुक पे लगे होंगे, और कई लोग नोट्स बना रहे होंगे पूरे फोकस से, है ना। अगर आप पतले भी होना चाहते हो ना फ्रेंड्स, अगर मैं मतलब मान लो पतले होना चाहूँ, तो क्या सिर्फ मेरे सोचते रहने से मैं पतली हो जाऊंगी? होगा ऐसा किसी के साथ भी? सोच सोच कर नहीं होंगे, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, है ना, डाइट प्लान करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, वॉक करनी पड़ेगी, है ना। तो जिस फील्ड में आगे बढ़ना है उससे रेलिवेंट प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है फ्रेंड्स, एक सिस्टमैटिकली अप्रोच लेनी पड़ती है, मतलब है ना। तो अगर हमें पतले होना है, बॉडी बनानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? डाइट को बड़ा बैलेंस और हेल्दी करोगे आप, और साथ साथ में हमें जिम वॉक रेगुलरली करनी पड़ेगी, है ना। अब स्पिरिचुअल लाइफ में देखो जो हमारा माइंड है ना फ्रेंड्स, वो हमारा सबसे बुरा दुश्मन भी है और सबसे बेस्ट फ्रेंड भी है। माइंड इज द वर्स्ट एनिमी और योर बेस्ट फ्रेंड। भगवत गीता में भी एक श्लोक है, हमने पढ़ा था कि मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और वो ही आपका मित्र भी बन सकता है। सबसे बड़ा दुश्मन का मतलब है कि वो दुनियादारी के बारे में सोचता रहता है फ्रेंड्स, कंपैरिजंस करता रहता है, है ना, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, बदले की भावना होती है, ईर्ष्या होती है, या किसी के लिए द्वेष बना लिया, अपनी वासना में उलझा हुआ है, यानी कि एक व्यक्ति दुखी रहता है, उसका मन कुछ ना कुछ फालतू की बातें सोच सोच कर उसको परेशान करता रहता है ना। तो ऐसे मन के साथ हम क्या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर पाएंगे फ्रेंड्स? नहीं कर पाएंगे। तो कुछ तो करना पड़ेगा हमें, तो वो प्राइवेट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें करनी पड़ेंगी, है ना। तो सत्संग ऐसा समझ लो एक कोचिंग क्लास है, सत्संग से आपने ट्रेनिंग ले ली, है ना, जैसे आप स्कूल में जाते हो या ट्यूशन क्लासेस में जाते हो, है ना, उसमें टीचर्स आपको कॉन्सेप्ट बताता है। बट फिर क्या करते हैं हम लोग, क्या खाली स्कूल और कोचिंग क्लास से हो जाता है, या बच्चों को होमवर्क भी करना पड़ता है, सेल्फ स्टडी भी करनी होती है? तो घर आकर जो अपनी मेहनत करता है ना स्पिरिचुअलिटी की, वो है साधना, और स्कूल जाना या कोचिंग क्लास है सत्संग। तो इस तरह से हमें समझना है ना, स्कूल जाना या कोचिंग क्लास जाना मतलब सत्संग, और घर आकर हम तो घर में ही सत्संग सुन रहे हैं, घर में ही जो अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, अपनी मेहनत करना है अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो है साधना। सिर्फ सुन लिया आपने सत्संग में, है ना, सुनना भी एक बहुत बड़ी बात है, लिसनिंग जो हैबिट होती है ना। ऐसे तो हम दुनियादारी में तो हम किसी की बात भी नहीं सुनते हैं बिल्कुल भी, है ना। तो सुनते रहने से ही हृदय परिवर्तन हो जाते हैं फ्रेंड्स, सुनते रहेंगे कम से कम नहीं तो 3-4 घंटे अगर हम अपना हैं अच्छा सुनने में, अच्छा बोलने में और अच्छा ही देखने में, है ना। इसके अलावा अंदर कुछ घुसाना ही नहीं है बिल्कुल, कुछ भी हो जाए मन ही नहीं करता। एक्चुअली इंटेंशनली थोड़ी आप करोगे, आपका मन ही नहीं करेगा कि यार मेरे को फालतू चीजें अंदर अपने लेनी नहीं है। उल्टा जो अंदर फालतू उन चीजों को बाहर निकालना, जब उन चीजों से आप बाहर निकलते हो ना अपने आप, फिर ये जो सत्संग से जुड़ी बातें हैं, परमात्मा से जुड़ी बातें, वो अपने आप अंदर अपना घर बना लेती है। लेकिन उस घर को बनाने के लिए पहले जो अंदर हमारा कचरा है उसको साफ करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, है ना। तो सुनते रहने से भी हृदय परिवर्तन हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। लेकिन अगर हम प्रैक्टिसेस करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हमारा जो लाइफ है फिर वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, है ना। तो ट्रेन करना है, डिसिप्लिन में करना है अपने मन को, जिसको अभी दुनियादारी से आ सकती है, अटैचमेंट्स हैं अलग अलग तरह की, उसको कैसे इन अटैचमेंट्स को, जो दुनियादारी के अटैचमेंट्स को, धीरे धीरे प्रभु के नाम के साथ हो, प्रभु के गुणगान के साथ हो, उसमें डिसिप्लिन करना है ना। जो आप संत महात्मा देखते हैं, ऋषि मुनि देखते हो, है ना, या आपने बातें सुनी होती हैं, तो उनके लिए तो वो चीजें हो चुकी हैं, वो अपने मन को साध चुके हैं। जो बॉडी बिल्डर है वो तो बन चुका है ना, या वो हेल्दी है, वो ट्रेंड हो चुका है ना, उसने अपनी बॉडी बना ली है मतलब। लेकिन जिसको बनना है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। और जो बन भी गया है फ्रेंड, आपने देखा होगा जब हम भी जिम जाते हैं या हमारे बच्चे जा रहे हैं, है ना, तो क्या वो प्रैक्टिसेस छोड़ देता है? अगर वो बन भी गया, मान लो बॉडी बना ली है किसी ने, तो क्या वो अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ देता है? नहीं फ्रेंड्स, वो प्रैक्टिसेस करता रहता है, है ना। बॉडी बनाने के लिए अगर हमने बॉडी बनाई है, उसके लिए इतनी मेहनत किया ना 1-1.5 साल, है ना, ये थोड़ी 1-1.5 साल मेहनत किया तो अब उसको बस छोड़ दो, अब मेरी बॉडी बन गई परमानेंट, अब वैसी बॉडी रहेगी मेरी। अगर आप नहीं करोगे 6 महीने और फिर से आपकी बॉडी वैसे पुरानी शेप में आ जाएगी, है ना। तो हमने अपनी लाइफ से लिंक करनी है सारी बातें। हमें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी तो हमने बस एक बार सीख ली, या मैंने भगवद गीता एक बार पढ़ ली तो बस मैंने सुन ली तो ली, अब क्या मैंने सुनना है ना। तो ऐसा नहीं है ना फ्रेंड्स, ये बातें नित्य निरंतर हमारे अंदर पढ़ती रहना चाहिए। जैसे हमें जिम जाते हैं, हमें पता है 1 घंटा जाएंगे या वॉक करेंगे तो पता है मेरी हेल्थ में इसका बहुत बेनिफिट है, है ना। लेकिन अपने अंदर मन को कैसे कंट्रोल करना है, अंदर जो अपनी प्रॉब्लम से हम जूझ रहे होते हैं, है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें हायर पावर से जुड़ना पड़ता है ना फ्रेंड्स। तो फालतू चीजें हम सोची जा रहे हैं, सत्संग हमें वहां तक जोड़ने का काम करती है, है ना। साधना से हम अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं, है ना। तो एक व्यक्ति बॉडी बिल्डर बन भी जाता है अगर, तो वो प्रैक्टिसेस फ्रेंड्स करता रहता है, और उन प्रैक्टिसेस को वो बोझ नहीं समझता, इंजॉय करता है ना। जब एक बार बॉडी बन गई, है ना, फिर हम इंजॉय करते हैं ना उसको, हमें पता चल जाता है कि यार इस तरह से मेरी बॉडी बनी थी, अब मुझे इसको प्रैक्टिस में रखना है, हमेशा करते रहना है। अब ऐसे ही जो पुराने लोग हैं 2020 से जुड़े हुए हैं, रेगुलर नित्य निरंतर जिन्होंने सुना है, है ना, उनको पता है कि मैंने इसको सुना था तो मुझे इतना इंजॉय मिला था, मैंने लाइफ को ऐसे इंजॉय किया था, तो मुझे फिर से वही एंजॉय मिलने वाला, उससे भी नेक्स्ट लेवल का एंजॉय आने वाला है ना। तो जो ऋषि मुनि वगैरह जो हमारे होते हैं, वो तो अपनी प्रैक्टिसेस करके उस स्टेज पे ऑलरेडी हैं भगवत कृपा से, कि उनका मन प्रभु में लग गया हुआ है ना। अब उनका मन प्रभु में इतना लग गया है, उनकी रुचि प्रभु के नाम में इतनी हो गई है कि अब उनको आनंद मिलता है, अब उनको प्रैक्टिस करना कोई बोझ नहीं लगता फ्रेंड्स। ऐसा नहीं लगता उनको कि मुझे साधना करनी पड़ेगी, मुश्किल नहीं लगता मतलब उनको अब। लेकिन जो नवसाधक होते हैं, बिगनर होते हैं, बिगनर का मन दुनियादारी में खोया हुआ होता है फ्रेंड्स, है ना। जब मैं अपनी बात करूं 2020 से पहले तो बिल्कुल खोए हुए थे दुनियादारी में, समझ भी नहीं आती थी भगवद गीता। 2017 में जब मैं जुड़ी थी, कुछ समझ नहीं आती थी भगवद गीता, जब मैं सुनती थी ऐसा लगता था बिल्कुल ही कहीं और ही दुनिया में पहुंच गए हम तो बिल्कुल ही, है ना। तो इसलिए शास्त्रों में कुछ विधि विधान ऐसे बताए गए हैं, ऐसे तरीके हैं फ्रेंड्स, अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो हमारा मन है वो डिसिप्लिन में आएगा, ट्रेनिंग होगी उसकी, है ना। जैसे जंगली घोड़ों को ट्रेन किया जाता है, अगर उसको रेस का घोड़ा बनाना है उसको तो, है ना। अगर हम एक डॉग भी खरीदते हैं ना तो उसको भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है फ्रेंड्स, तभी तो वो सिट डाउन या शेक हैंड या कई तरह की चीजें कर पाता है फिर। तो वैसे ही फ्रेंड्स, हमारे और प्रभु के कनेक्शन के बीच में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारा मन डालता है। जब उसको बोलो ना कि चलो भक्ति कर लेते हैं यार, कुछ डिवोशनल एक्टिविटी कर लेते हैं, है ना, तो वो क्या बोलता है, यार मेरा मन नहीं करता, और कई 100 बहाने बना देता है, कई तरह के मिथ हमारे सामने रख देता है, कई तरह की बातें वो बोलने लग जाता है कि मुझे भक्ति नहीं करनी है ना, या उसको बोलो कि खाना हेल्दी खाओ है ना, डायबिटीज हो गई है तुम्हें, तो वो क्या बोलेगा, मेरा मन नहीं करता, मेरा मन तो तीखा चटपटा या स्वीट्स खाने का करता है ना। तो मन हमारा आउट ऑफ कंट्रोल है फ्रेंड्स। साधना वो प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे हम अनकंट्रोल्ड मन को अपने वश में लाते हैं, है ना। जो मन प्रभु में नहीं लगता उसको खींच खींच कर आते डालते हैं कि अब तूने दुनियादारी के बारे में नहीं सोचना है, वहां से तुझे सिर्फ दुख ही दुख मिलेंगे, तुझे प्रभु के बारे में चिंतन करना है, वहां से तुझे आनंद मिलेगा। जो तू चीजें बाहर ढूंढ रहा है, दुनियादारी में सुख ढूंढ रहा है, वो कुछ नहीं मिलने वाला सुख हमें दुनियादारी में। हम अपने आसपास के लोगों में सुख ढूंढ रहे होते हैं, तो क्या मिला हमें सुख? सुख ही ढूंढ रहे हैं ना हम लोग, मिला कभी हमें दूसरों में सुख जो ढूंढते हैं हम, है ना। तो इसको पैटर्न को हमें बदलना पड़ेगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि मन अलग अलग नेगेटिव विचारों में पड़ा होता है फ्रेंड्स, है ना। जैसे कि तुलना करता रहता है, कंपैरिजन करता रहता है, जेलसी करता रहता है, एक्सपेक्टेशंस में लगा रहता है ना। तो मन हमें दुखी ही करता है ना। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें समय के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से करनी है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो फ्रेंड्स पुराने जमाने के हिसाब से ही रहती है, है ना, उनमें ज्यादा बदलाव नहीं रहता, जैसे बड़े बड़े सेंट्स करते थे या करते हैं अभी भी, है ना। बट अब हम तो गृहस्थ आश्रम को फॉलो कर रहे हैं ना, हम गृहस्थी में है, है ना, तो उसका तरीका थोड़ा बदल जाता है ना। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है जो हमें रिकमेंडेड है फ्रेंड्स, अब हमारे शास्त्रों में रिकमेंड है, कौन कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वो हम पहले समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो गोलोक एक्सप्रेस में हमें बताई जाती है, जो हमारे शास्त्रों द्वारा रिकमेंडेड है, जो साधना हमें बताई जाती है, वो है भगवान का नाम जप करना, है ना। इसके लिए आप गोलोक एक्सप्रेस के बहुत सारे वीडियोज है नाम जाप पर, मंत्रा मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, है ना, वो आप देख सकते हो क्या होती है मंत्रा मेडिटेशन एंड इट्स बेनिफिट्स। गोलोक एक्सप्रेस आप टाइप कीजिए यूट्यूब पे ना, उस पर लिखी है मंत्रा मेडिटेशन या नाम जाप, तो अपने आप बहुत सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे, आप देख सकते हो। मैं आपको वैसे व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगी, है ना। तो सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेड साधना है वो है नाम जप करना, है ना। थोड़ा सा शॉर्ट में हम आज समझते हैं इसको। देखो जब आप चलते फिरते प्रभु का नाम जाप करते हो ना, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आप उच्चारण कर रहे हो। अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो मन में कर लो, चलते फिरते आप प्रभु का नाम जाप कर सकते हो। घर में जैसे चलते रहते हैं हम, कितना काम करते रहते हैं, आसपास घूमते रहते हैं, तो मन में ये टेंशन नहीं होनी चाहिए मुझे ये करना मुझे वो करना। आप जब नाम जाप करते हुए काम करोगे ना, और अपने काम करने की प्रोडक्टिविटी देखना फ्रेंड्स, आप करके तो देखो। अब कई लोग सुनते रहते हैं, भगवद गीता सुन रहे होते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिसेस पे नहीं आते वो, इसलिए उनके जीवन में ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आती, है ना। तो जब हम चलते फिरते करते रहेंगे तो आप उसका रिजल्ट खुद ही देखोगे, है ना। चाहे उसका उच्चारण कर लो, या फिर अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप उसको मन में कर सकते हो, है ना। अंदर जाप चलता रहे, घर में टाइम बना लो, है ना, फिक्स एक टाइम बना लो कि जब भी मैंने मंदिर में पूजा करने बैठना है तो मैंने एक माला करनी ही करनी है, फिक्स टाइम बना लो। मेरे को भी होता है कि मैंने जब मंदिर में बैठना है तो मुझे लगता है कि मेरे को करनी ही करनी है, तो मैं कई बार 4 माला या कई बार 8 माला मैं मंदिर में ही कर लेती हूँ, है ना। बाकी आप वॉक पे जाते हो, बच्चों को पार्क लेके जाते हो, कहीं ट्रेवल कर रहे हो, खाना बना रहे हो, है ना, तो चलते फिरते भगवान का नाम ले सकते हो। क्यों रिकमेंड की जाती है ये मंत्रा मेडिटेशन? क्योंकि फ्रेंड्स हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम मन को खुद कंट्रोल कर लेंगे। अर्जुन ने क्या किया था? उसने भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनको कहा कि आप मेरे सारथी बन जाओ। जब भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी बन गए, यानी कि बुद्धि में विराजमान हो गए, तब जो घोड़े हैं व्हाट्सएप पे देखो, है ना, तो उसमें मैंने एक पिक्चर भेजी है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का चैरियट, है ना, रथ की पिक्चर भेजी है मैंने। जो घोड़े वो इंद्रियां हैं, और घोड़े की लगाम क्या है? वो है मन हमारा। और देखो लगाम किसके हाथ में है? तो उस मन को अर्जुन ने खुद नहीं पकड़ लिया, है ना, वो लगाम भगवान श्री कृष्णा के हाथ में। ऐसे हमने अपने मन की लगाम खुद ही संभाल ली होती है ना। अब वापस आ जाओ जरा 2020 से पहले, भगवद गीता सुनने से पहले क्या करते थे हम अपने मन के अकॉर्डिंग खाना है, अपने मन के अकॉर्डिंग चलना है, अपने मन के अकॉर्डिंग काम करने है, अपने मन के अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहे थे, तो क्या सुखी थे? क्या आज भगवद गीता पढ़ के जब हम मन को कंट्रोल कर रहे हैं, इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आज ज्यादा सुखी हैं? हमें पता चल जाता है कि यार मन से क्या काम करवाना है और कैसे करवाना है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि मन को हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को कहा, एक श्लोक है उसमें, कि मैं हवा को तो कंट्रोल में कर सकता हूँ बट मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। फ्रेंड्स हवा को कंट्रोल करना आसान बात है क्या, जो उसे बोल रहा है ना। अर्जुन पावरफुल था फ्रेंड्स, अर्जुन महान बली था अर्जुन, है ना। तो अर्जुन ने कहा एक श्लोक में भगवद गीता में आएगा कि मैं हवा को तो कंट्रोल कर सकता हूँ कृष्णा, लेकिन मैं मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। भगवान ने भी एडमिट किया उसमें भगवद गीता में कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मन को कंट्रोल करना, लेकिन भगवान ने क्या कहा, उपयुक्त अभ्यास के द्वारा ये संभव है। और वो उपयुक्त अभ्यास में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हरिनाम करना है फ्रेंड्स, चैंटिंग करना, नाम जाप करना, है ना। हरिनाम करेंगे हमारी बुद्धि में प्रभु आएंगे, हमारे सारथी बन जाएंगे, फिर मन को प्रभु हमारे लिए काबू में करेंगे अपने आप, है ना। और मंत्र जाप आप माला से भी कर सकते हो, जो मिल जाती है बीड माला, है ना, आप उससे भी कर सकते हो, या फिर आप टेलीकाउंटर मिल जाते हैं आजकल, है ना, आप टेलीकाउंटर से भी कर सकते हो, है ना। कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे हो या आप किसी के घर गए हो तो आप टेलीकाउंटर आप अपने पास रख सकते हो, टीवी देख रहे हो तो टेलीकाउंटर से आप अपना मंत्र जाप कर सकते हो। ये टाइम तो हमने खुद ही निकालना ना फ्रेंड्स, कब करना है, लेकिन करना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र का एग्जांपल लिया, लेकिन अगर आपका फेथ सिस्टम कुछ और है, आप कुछ और मंत्र जाप प्रभु का करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो फ्रेंड्स। इसमें नहीं हमने उलझना है कि मैं भगवान शिव जी को मानती हूँ तो मुझे वो करना है, या मैं माता रानी को मानती हूँ तो मुझे वो करना है, या मेरे गुरु जी ने मुझे कोई मंत्र जाप दिया तो मुझे वो करना। आपको जो अच्छा लगता है ना, आपने वो मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय कर सकते हो, राधा 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 कर सकते हो, है ना। हरे कृष्णा महामंत्र तो हम आपको बोलते ही रहते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जय माता की, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है ना, वो आप कर सकते हो। इसमें कोई नियम है, इम्पोर्टेंट है करना, बस आप वो करते रहोगे करते रहोगे तो एक स्टेज ये आएगी कि एक दिन आपका मन अपने आप ही प्रभु में लग जाएगा फ्रेंड्स। और ये 100% सही बात है। मैंने भी कभी नहीं किया था ये मंत्रा मेडिटेशन, मंत्र जाप मैंने कभी नहीं किया हुआ था। मेरे दादी जी ने किया था कभी, मेरे मदर ने भी नहीं किया हुआ था कभी। दोनों ग्रैंड मदर्स को देखा है मंत्र जाप करते हुए, भगवद गीता पढ़ते हुए, रामायण पढ़ते हुए, मेरे ग्रैंड मदर पढ़ते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं किया, मेरी मदर ने कभी नहीं किया, है ना। ये सिर्फ भगवद गीता पढ़ने के बाद ही मैं भी अभी से कर रही हूँ 3-4 सालों से। और वाकई फिर अपने आप ही एक स्टेज आती है कि अपने आप ही प्रभु में मन लग जाता है, हर चीज में मन लग जाता है फिर एक्चुअली, है ना। तो एक तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होगी, दूसरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो है ईश्वर को भोग लगाकर, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर, फिर एज ए फैमिली प्रसाद रूप में अपना भोजन ग्रहण कीजिए, है ना। और जो आप जो फैमिली में कोई भी चीजें खरीदते हो, आप कपड़े खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, घर खरीदते हो, उनका भी भगवान को भोग लगाओ। भगवान को वो जो कीज लाते हो आप गाड़ी की घर की, तो वो कीज भगवान को अर्पण कर दो, है ना। वहां पे थैंक यू करो भगवान को, किसने दिया है वो गाड़ी, वो घर, वो चीजें, वो खाना, ये सांसें कौन दे रहा है। जो दे रहा है, लगातार दे ही रहा है, उनको हम थैंक यू नहीं करते, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है हमारे मन में उनके लिए। अनगिनत चीजें जो हमने मांगी भी नहीं वो हमें मिली जा रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज है जो हमें नहीं मिली, हम उसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। अगर वो मिल जाती तो कुछ और नहीं मिलना था, फिर हमने उस चीज के पीछे भागना था, है ना। तो प्रभु को थैंक यू करने के लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, है ना। उसके बाद प्रभु के प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए उन चीजों को, है ना। चाहे आप कार खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, हर एक चीज को हम अपने परमात्मा को, हम वैदिक परिवारों को भोग लगाना चाहिए, है ना। भोग लगाकर एक तो हमें प्रभु को थैंक यू करना आएगा, प्रभु का स्मरण बढ़ जाएगा, स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ा हमें, है ना। शुरू शुरू में तो हो सकता है आप एक नियम बनाकर करो, आपको आपको याद नहीं रहेगा, आपको करना पड़ेगा, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब आप करते रहोगे ना, तो वो मन ये चीजें सीख लेता है, संस्कार पड़ जाता है हमारा कि यार मुझे करना है, है ना। अपने आप ही हाथ जो चीजें ली होती है भगवान की तरफ थैंक यू को बढ़ जाते हैं, है ना। और इसका फल क्या मिलेगा आपको, कि जो बच्चों को आपको स्पेशल कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, बच्चे जो आपको देखेंगे ना वो अपने आप ही अडॉप्ट कर लेंगे, उनको आप अच्छे संस्कार दे पाओगे, उनका भी धीरे धीरे फिर प्रभु में मन लगना शुरू हो जाता है, है ना। और खाना हमें भोग लगा कर ही खाना चाहिए फ्रेंड्स। मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने भी कभी भोग लगा कर खाना नहीं खाया था भगवद गीता से जुड़ने से पहले, बस वही कि ओकेजनली कभी आलू पूरी को भोग लगा दिया, ओकेजनली कभी हलवा चढ़ा दिया, ओकेजनली कभी फ्रूट चढ़ा दिए, ड्राई फ्रूट का भोग लगा दिया कभी कभी, है ना। ऐसे सिस्टमेटिकली नहीं मैं करती थी, कभी भी नहीं किया मैंने। लेकिन जब भगवद गीता से जुड़ी, भगवद गीता पढ़ने शुरू हुई, जब हमें रिकमेंड किया गया फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी बताती हूँ कि जब भी मैंने ये बातें सुनी ना स्टार्टिंग में, तो जो जो बातें मुझे बोली गई ना एग्जैक्टली वही मैं करती गई, कुछ इफ बट कुछ आया ही नहीं मेरे मन में। मुझे लगा यार सही तो बोल रहे हैं, मतलब हर एक चीज मैं सुनती गई अंदर घुसती गई और मुझे लगा यार क्या हम कुछ भी नहीं करते हुए, रोने के आते हैं बस, रोना हमें पता है कि क्या क्या चीजें नहीं मिली, भगवान के आगे रो लो, लोगों के आगे रो लो, उससे फर्क क्या पड़ रहा है, उल्टा मेरी लाइफ और डिफिकल्ट हो रही है, इजी नहीं हो रही है यार। मुझे ऐसा लगा कि अंदर से मेरी आवाज आ रही है कि कर ले मोना, कर ले नाम जाप, भोग लगा ले। तो मैं भोग लगाना शुरू होगी अपने आप ही। आज मैं पहले भगवान को भोग लगाती हूँ 3 टाइम का, है ना, सुबह लगाना है, लंच के टाइम लगाना है, रात को खाने के टाइम लगाना है ना। प्याज लहसुन मैं यूज करती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन बिना प्याज लहसुन के भोग लगाना है भगवान को, है ना। जिस दिन प्याज लहसुन वाली चीज बनती है तो उस दिन मैं खाली एक छोटी सी परौंठी गुड़ घी के साथ दे देती हूँ। कुछ भी आप कर सकते हो, है ना, दलिया बना लो, फ्रूट चढ़ा लो, दूध ड्राई फ्रूट्स रख लो, कितना कुछ, कितनी ऑप्शंस रहती है हम लेडीज के पास, तो सब कुछ चढ़ा सकते हो आप सिवाय लहसुन और प्याज की। आपका टाइम नहीं है, आप बिजी शेड्यूल है ना, रात को मान लो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप खाली फ्रूट चढ़ा दो, दूध का और ड्राई फ्रूट का भोग लगा दो। अगर टाइम है तो एक छोटी सी परौंठी बना लो, गुड़ घी के साथ रख दो उनको, है ना। तो एक स्मरण बढ़ जाता है, परमात्मा को भी लगता है कि देखो सबसे पहले मेरे बच्चे मुझे याद करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे घर में हो और हम उनको खिलाए बिना खुद खा लें। हम कर सकते हैं ऐसे कि पेरेंट्स घर में हैं और हम उनको बिना खाना खिलाए हम खुद खा रहे हैं, उनको देख भी नहीं रहे हैं, है ना। तो वो परमात्मा जो सबके पिता परमेश्वर हैं, उनको बिना कुछ पूछे हम सब कुछ यूज कर रहे हैं, उनका दिया हुआ चीजें हम यूज करते हैं, है ना। और हम एहसान करते हैं कि भाई आपने मुझे ये चीजें नहीं दी हैं, जो चीजें नहीं मिलती हमें, तो इतनी ब्लेम गेम में फंसे रहते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, कब पूछो ना अपने आप से हम क्या करते हैं उनके लिए, है ना। तो इन चीजों से बाहर आना है फ्रेंड, जो चीजें सीख ली सुन ली उसको अप्लाई करते चलो बिना किसी क्वेश्चन के, आपको अपने आंसर खुद ही मिल जाने हैं। जो आज मैं बोल रही हूं, जो आप सुनते हो उन डिवोटीज को जो 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, तो वो ही बातें कर रहे हैं ना, जो जिन्होंने सुना और एकदम अप्लाई कर लिया, है ना। फिर तीसरी प्रैक्टिस है फ्रेंड्स, तीसरी साधना का पाठ है एकादशी व्रत करना। कोई भी व्रत आप कर सकते हो, है ना, जो आपको अच्छे लगते हैं। जैसे मैं एकादशी व्रत रखती हूँ और मंडे के फास्टिंग भी रहती है मेरी, हर मंडे को व्रत रहते हैं, है ना। तो व्रत रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मन को खाने से बहुत अटैचमेंट्स रहती है फ्रेंड, है ना। अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो कितना समय हम खाना बनाने में, खाना खाने में या कहाँ खाएंगे इस पर सोचते रहते हैं हम, है ना। तो जब हम व्रत रखते हैं, एक तो हमारा फायदा इसमें ये है कि हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक मिलती है, जो कि बहुत जरूरी है। अब तो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करने लग गए कि हाँ फास्टिंग करो आप, आपकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, बॉडी को डिटॉक्स करना। तो फिजिकल हेल्थ भी सुधरती है और हम अपने मन को बताते हैं कि भाई मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकती हूँ। मन को बताते हैं हम कि तुम मेरे बॉस नहीं हो, क्योंकि मन तो ललचाएगा कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है ना। जो मन कहता था मुझे गुलाब जामुन खाने हैं, मुझे टिक्की खानी है ना, तो हम क्या कहते हैं कि नहीं आज नहीं खाना है, आज तो मेरा फास्ट है, जाता ही नहीं ध्यान फिर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो, है ना। हम कहते हैं मन को नहीं आज तो ऐसा कुछ नहीं खाना है, आज तो सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, आज तो मेरे को सिर्फ एक टाइम खाना खाना है, जैसे भी आप फास्टिंग करते हो, है ना। तो धीरे धीरे हम अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान की कृपा से अपने मन को नियंत्रित कर रहे हैं, है ना। वो भी एक विधि है, बड़ा इंपॉर्टेंट साधना का पार्ट है ये व्रत रखना। व्रत रखने से हमारा मन भी प्रभु में लगता है ना। और फास्टिंग तो हमें वैसे भी, अगर हम भक्ति में नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, तब तो भी हमें फास्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा साधना करने के और भी बड़े सारे तरीके हैं फ्रेंड, जैसे ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, है ना। जो रिलीजियस नहीं भी है, ग्लोबली मेडिकल प्रैक्टिसेस में भी माना जाता है कि मेडिटेशन करने से मन शांत रहता है, ध्यान लगाने से मन शांत रहता है। मन जिसका शांत रहता है फ्रेंड, उसको बीमारियां भी कम लगती हैं। जिसके मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे उसको फिजिकल हेल्थ इश्यूज होने ही होने हैं फ्रेंड्स, है ना। चाहे साइलेंट मेडिटेशन कर सकते हो आप, ब्रीदिंग टेक्निक्स पर कर लो, है ना, ओम मेडिटेशन कर लो, जैसे आपकी श्रद्धा है, ध्यान लगा सकते हो साधना के रूप में, है ना। फिर नेक्स्ट साधना का पार्ट है कि आप कोई नियम बना लो कि जब सब घर में इकट्ठे होंगे, मॉर्निंग में इकट्ठे होते हैं चाहे रात को इकट्ठे होते हैं, तो हम सब मिलके आरती करेंगे। तो जो वो नियम आपने बना लिया ना, वो भी आपकी साधना होगी। तो फैमिली के साथ कलेक्टिवली आपने साधना कर ली, है ना, और बच्चों को भी संस्कार मिलेंगे। फिर नेक्स्ट कौन सा पार्ट है साधना का कि मान लो आपने एक नियम बना लिया कि संडे को हम लोग घर में प्रभु का कीर्तन करेंगे। मान लो हरे कृष्णा महामंत्र आपने जोर जोर से लगा दिया, है ना, मतलब कि स्टीरियो उस पे लगा लिया, है ना, कंप्यूटर पे या फोन पे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है ना, जोर जोर से आपने हरे कृष्णा महामंत्र लगा दिया या कोई भजन लगा लिया, तो आप जो डांस करते हुए प्रभु का कीर्तन कर सकते हो सब लोग फैमिली मेंबर्स मिलके, है ना। तो साधना को वैरायटी से करना, इसको एंजॉयबल बनाओ। साधना का मेन गोल है कि मन को प्रभु में लगाना, दुनियादारी से हटा के मन को प्रभु में लगाना। ऐसी अगर किसी डिवोटी ने डिसाइड किया कि मैं रोज सोने से पहले एक डिवोशनल वीडियो देखूंगी, है ना, मान लो भगवत गीता के कोई वीडियोस मैं देखूंगी या कोई भी मेरे को वीडियोस देखना, और उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिया करूंगी, नोट्स बनाऊंगी उसके बारे में, है ना, और उसमें उसको ध्यान से समझूंगी कि उसमें क्या बताया गया है ना, और क्या क्या मैं उसको अप्लाई कर सकती हूँ, है ना। तो वो अगर आपने अप्लाई कर लिया तो वो भी आपकी साधना होगी, है ना। तो सिंपल तरीके से कोई भी किसी भी तरह से आप कर सकते हो। कॉम्बिनेशन बताए जा रहे हैं, वैरायटीज बताई जा रही है, तो आपको अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस के हिसाब से जो ठीक लगे तो आप वो चूज कर सकते हो, है ना। स्टार्ट तो कहीं से करना है पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना, लेकिन कुछ करना है हमें, कुछ तो करना ही चाहिए। चलते फिरते भगवान का नाम जाप करना बहुत ईजी होता है फ्रेंड्स, है ना। ऐसे हम दुनियादारी की बातें सोचते रहते हैं, अगर आप सच में नाम जाप करना शुरू हो गए ना चलते फिरते, फिर आपको फालतू दुनियादारी का बिल्कुल ध्यान भी नहीं रहेगा। जो फालतू हम सोचते रहते हैं, प्रेजेंट में तो रहते नहीं हम, फ्यूचर और पास की बातें सोचते रहते हैं, उसने मुझे क्या कह दिया, ये फालतू फ्यूचर में सोचते रहना कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या करना चाहिए मुझे, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, फालतू जो चिंताएं हमने बनाई होती है, कि हम नाम जाप करते रहते हैं तो ये सब चिंताओं से हमें मुक्ति मिल जाती है फ्रेंड्स। फ्रेंड सुनने में मुश्किल लग रहा होगा आपको, इतनी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यार मैं कैसे करूंगी, बट जब आप करोगे ना आपको बहुत आसान लगेगा। मतलब होता है ना कि एक माइंड कहाँ पे है और कहाँ से कहाँ आप पहुंच जाओगे, आपके अंदर से जो पूरा जो सिस्टम है ना, आज आप अच्छे से सिस्टम को देखो, उस सिस्टम को ऐसे लगता है किसी ने ऐसे बदल ही दिया है या उठा के कहीं बाहर फेंक दिया और अंदर कोई नया सिस्टम आ गया है, है ना। तो घर में भोग लगाना, व्रत रखना, ध्यान लगाना, आरती का नियम बनाना, है ना, या कीर्तन करना भगवान के नाम का, ये हम नियम बना सकते हैं। किसी भी टाइम आप ये वाला प्रैक्टिसेस कर सकते हो, है ना। नियम बना लो कि किसी पर्टिकुलर डेज पे हम मंदिर जाया करेंगे, है ना। नियम बना लिया, अगर हम नंगे पांव नहीं जा सकते तो पैदल जाएंगे, गाड़ी नहीं लेकर जाएंगे, हम पैदल चल के जाएंगे। पुराने जमाने की साधना के बारे में नहीं सोचना फ्रेंड्स कि एक टांग पर 100 साल तक मैं खड़ी रहूंगी तभी प्रभु खुश होंगे। उनकी कैपेसिटी अलग थी फ्रेंड्स, हमारी कैपेसिटी अलग है, है ना। अगर हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नियम बना लेंगे तो इजी हम कर पाएंगे। हमें बड़ी बड़ी चीजें हम सोच लेंगे, करना कुछ नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स, है ना। मोटी बात यह है कि मन को हमेशा कंफर्टेबल नहीं रखना है फ्रेंड्स। हमेशा जिम में जाती हूँ ना मैं, जो इंस्ट्रक्टर था ना वो हमेशा बोलता था, हमेशा ना अपनी बॉडी को कंफर्टेबल जोन से बाहर रखना। जो चीज आपको लग रही है कि ये इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, नहीं, इससे ज्यादा प्रैक्टिस करो, है ना। तो वही बात है कि मन को हमेशा कंफर्टेबल नहीं रखना है फ्रेंड्स। जो भी वो मांगता रहे उसको अगर हम देते रहेंगे तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर उसको नहीं मिले चीजें तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। तो उसको हमें डिसिप्लिन में लाना है, ये हमें ही सिखाना है उसको, है ना, कि हमें प्रभु की तरफ लगना है। जब हम प्रैक्टिसेस करेंगे तो अपने आप बोलने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें, अपने आप ही वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है सब कुछ, है ना। तो इस तरह से अगर हम समझे तो साधना इस तरह अलग अलग प्रकार से की जा सकती है, है ना। तो इसका मेन उद्देश्य यही है फ्रेंड्स कि हम अपना मन डिसिप्लिन में लाएं और प्रभु के साथ हमारा प्रेम डेवलप हो, हमारा स्मरण बढ़े। और एक और साधना का पार्ट है अपने शास्त्र पढ़ना, है ना, अपने शास्त्रों का अध्ययन करना, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मस्ट है ये लाइफ में। जीवन जीना सिखाते हैं हमें हमारे शास्त्र, है ना। मटेरियली भी तो आगे बढ़ने के लिए हमें स्टडीज करनी पड़ती है ना, है ना, कैसे अपने आप ही हो जाता है सोचने से ही, है ना। वैसे ही स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड्स हमें अपने जो ग्रंथ हैं भगवद गीता उपनिषद हमें पढ़ने बहुत जरूरी है, जो हमें लाइफ जीना सिखाते हैं, है ना। तो शास्त्र पढ़ना ये भी साधना का एक पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं बोलती मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, भगवद गीता पढ़ना, अपने शास्त्र पढ़ना, क्योंकि आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगी। अगर अंधकार छटता है तो कैसे छटेगा, जब कुछ अच्छी चीजें अंदर घुसेंगी, अंदर अच्छी चीजें घुसेंगी कैसे, जब हम कुछ अच्छा पढ़ेंगे, गलत पढ़ेंगे, नेगेटिव चीजें पढ़ेंगे तो नेगेटिव चीजें घुसेंगी, पॉजिटिव पढ़ेंगे, अपने शास्त्र पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली अच्छी चीजें अंदर घुसती हैं और बेकार चीजें हैं जो हमारे मिथ है, मिसकंसेप्शन है, फालतू चीजें हैं, दुनियादारी में उलझे पड़े हैं, वो सब चीजें बाहर निकल जाती हैं फिर। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हमेशा भगवद्गीता अपने पास रखो और हमेशा दो श्लोक आपने सोचो कि मैंने पढ़ने ही पढ़ने हैं। या अपना जो पॉडकास्ट में सत्संग है मैं उसको रोज रिवाइज करूंगी, नोट्स बनाऊंगी। जब भी भगवद्गीता स्टार्ट होगी मैं एक रजिस्टर लूंगी और उसमें रोज के रोज नोट्स बनाया करूंगी। सोचो ना, आप सोचोगे तभी आप कर पाओगे। दो श्लोक पढ़ने की हैबिट डालो, समझो उसको ध्यान से कि क्या कह रहे हैं भगवान। ऐसे नहीं पढ़ना बस पढ़ लिया, जैसे हम किताबें पढ़ते हैं हनुमान चालीसा पढ़ ली, दुर्गा चालीसा पढ़ लिया, बस हो गया, है ना। समझना है उसमें कि क्या बोल रहे हैं भगवान, उसको अपनी लाइफ से लिंक करके सोचना है कि कैसे मैं इसमें अपनी लाइफ में इंप्रूव कर सकती हूँ, कैसे भगवान ने अपनी लाइफ जी, कैसे वो अर्जुन को गाइड कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, है ना। तो जो डीपली इंट्रोस्पेक्ट करते हो ना आप उस पॉइंट को, उन वर्सेस को, ऐसे खाली पढ़ लिया वो साधना नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप डीप चले जाते हो थोड़ा उसमें तो वो साधना है ना। अगर आपने सोच लिया कि मैंने नियम बनाना है कि मैंने पूरे दिन आधा घंटा मैं किसी से बात नहीं करूंगी, साइलेंस में रहा करूंगी, तो मौन व्रत हो गया, है ना। जो हम बोलने में इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, ऐसे फालतू बोलते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, वो ही बातें निकालते रहते हैं। जब हम इन चीजों में आगे बढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, हम बिल्कुल बहुत ही टू द पॉइंट बात करने के आदि हो जाते हैं। फालतू बातें करने का मन ही नहीं करता, ना करने का ना सुनने, है ना। सोच लिया कि मैं आधा घंटा बात नहीं करूंगी, मन से जाप करती रहूंगी, शांत रहूंगी, तो वो भी साधना है। तो अर्चा विग्रह की पूजा करना ये भी एक साधना का पार्ट है ना। इसको भी हम साधना का पार्ट कहते हैं कि अपने अर्चा विग्रह की जो हम दो टाइम पूजा पाठ अर्चना करते हैं, है ना, वो हमें करनी चाहिए, है ना। एक कनेक्शन बनता है भगवान से। अच्छा, विग्रह की पूजा करना, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, उनपे विचार विमर्श करना, ये सब साधना के पार्ट है। ये अलग अलग आइडियाज है, है ना। तो वैरायटीज रखनी है हमें, इससे ज्यादा एंजॉयबल रहती है स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि सबके मूड्स अलग अलग हैं, सबका नेचर अलग अलग होता है, सबकी सरकमस्टांसेस अलग अलग है। तो सब तो आप सबको अपना नेचर समझ कर और सरकमस्टांसेस समझ कर आपको शुरुआत करनी चाहिए, है ना। तो आजकल के हिसाब से, तो जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सारी ऑप्शंस है हमारे पास। आप ट्रेवल कर रहे हो, आप सुन सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, सत्संग सुन सकते हो, है ना। तो मतलब पॉइंट ये कि हमारे अंदर प्रभु से जुड़ी हुई बातें जानी चाहिए रोज नित्य निरंतर। और जो हमारे मन का नेचर है ना, हर वक्त दुनियादारी की बातें सोचते रहना, वो सोचना फिर बंद कर देता है। वो तो चलता रहता है मन, हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है ना, वो सोचना फिर बंद कर देता है। मतलब आपकी जितने जितने परसेंट आप आगे बढ़ते जाते हो, उतने परसेंट वो कम होता जाता है उसको सोचना। और प्रभु के नाम जप से, प्रभु की गुण लीलाओं से वो जुड़ जाता है ना। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिससे आप साधना कर सकते हो, है ना। ऐसे कुछ एग्जांपल थे, कुछ भी चूज कर सकते हो फ्रेंड्स। और प्रिकॉशंस क्या लेनी है इस रास्ते में चलते हो, कि एकदम स्पीड नहीं मार लेनी है ना, कि एकदम भागे उस तरफ, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, है ना, कि हमने ये सुना वो सुना, है ना, ये हमने कोई स्वामी जी की बुक पढ़ी थी कि वो तो 8-8 घंटे ध्यान में चले जाते थे। हम कोई ऐसे कोई ऋषि मुनि कोई स्वामी नहीं है। हम लोग, हम दुनियादारी में फंसे हुए बड़े ही नॉर्मल इंसान है। तो हमें अपना लेवल देखना है, पढ़ना है बुक्स को, प्रेरणा लेनी है उनसे। तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, है ना। आप एक माला से स्टार्ट करो, 10 मिनट ध्यान लगाने से स्टार्ट करो, बड़े बड़े प्लान नहीं बनाने हैं। और दूसरी प्रिकॉशन, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है साधना का, कि विधि विधान नियमों का पालन तो करना है, लेकिन ये नहीं भूलना है, इम्पोर्टेंट है भाव। हमारे भाव कैसे हैं, सब कुछ भाव से करना। ईश्वर भाव गृह जनार्दन है, है ना। आप भोग लगा रहे हो तो 2 मिनट बैठ जाओ वहां पे, हरे कृष्ण महामंत्र कर लो 4-5 बार, थैंक यू कर लो प्रभु को कि आपने ही सब कुछ दिया है। 2 मिनट तो सच्चे दिल से प्रभु के साथ बैठो, है ना। मेन है प्रभु के साथ भाव लगाना। क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, कि मैंने 16 माला कर ली, मैंने आज ही माला कर ली 16, बस उसके बाद फिर कोई पता ही नहीं है, है ना। क्योंकि पहले दिन आप इतना जंप मारोगे, फिर आप अगले दिन के लिए कैपेसिटी नहीं बचेगी आपकी, है ना। तो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। पाठ को रट्टा नहीं लगाना है। भगवद्गीता पढ़ रहे हो तो उसको रट्टे की तरह नहीं पढ़ना है, उसको डीपली स्टडी करो, है ना। तो भक्ति का मतलब फ्रेंड्स भाव लगाना होता है ईश्वर के साथ। तो भाव हमें लगाना है, क्वांटिटी कम रखनी है, बट जितना भी करना है उसको भाव से करना है, दिल से करना है। बेशक छोटे छोटे स्टेप्स लो, लेकिन अगर नियम बना लिए तो उसको फिर कंसिस्टेंसी से नित्य निरंतर हमें करना है। सोच लिया कि मैंने एक माला करनी है तो करनी करनी है, है ना। 8-10 दिन एक माला करो, फिर उसको 4 माला पे ले आओ। 4 माला को करते हुए 1 महीना हो गया तो उसको 8 माला पे ले आओ। तो धीरे धीरे हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। हाँ, कुछ इमरजेंसी आ जाए, नियम छूट जाए, तो उस दिन का नियम जो कम किया था दूसरे दिन कंप्लीट कर लो, है ना। तो 90-95% हमें रेगुलरली से चलना पड़ेगा फ्रेंड्स। है ना, अगर आप चाहते हो कि रियली आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो तो, है ना, सत्संग में भी साधना में भी आपको 90-95% रेगुलर चलना है ना। और साधना के लाभ क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं शॉर्ट में, है ना। देखो फ्रेंड, सबसे पहले अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में हमें सक्सेसफुल होना, तो हमें माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए हमारा, हमें अच्छी विल पावर चाहिए, अच्छा फोकस चाहिए। अगर हम नेगेटिव थिंकिंग से बचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तभी हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। चाहे कोई भी फील्ड हो, फैमिली लाइफ हो, कैरियर हो, स्पोर्ट्स हो, कहीं भी। साधना से देखो फ्रेंड्स, अगर आप परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हो, आप खुश रहना शुरू कर देते हो, आपको अपने अंदर की कमियां दिखने शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे हम फिर उस कमियों से बाहर निकलने का वे ढूंढने शुरू कर देते हैं, है ना। ब्लेम गेम से बचते हैं हम लोग साधना करते रहने से। अपने अंदर का मंथन होगा, विष निकलेगा अपने अंदर का, मंथन करते रहेंगे। अभी तो दुनियादारी का मंथन करते रहते थे ना, दुनियादारी का विष हमने अपने अंदर घुसाया हुआ। जब साधना करते हैं, अपने अंदर का मंथन होगा, अपने अंदर का विष निकलेगा अंदर से। आपको प्रभु शक्ति देंगे, हम सबको प्रभु शक्ति देंगे कि हम उन कमियों को कैसे डील करना है वो हम सीख पाएंगे। स्ट्रेंथ मिलती है साधना से, शक्ति मिलती है ना। तो जब आपका ध्यान खुद को सुधारने में चला जाएगा ना, तो हमारे रिश्ते भी बेटर बनते हैं फिर ना? क्योंकि जो लोग ब्लेम गेम में पड़े होते हैं, ईर्ष्या में पड़े हुए हैं, द्वेष में पड़े हुए हैं, उनके झगड़े होते रहते हैं, है ना। तो जब कोई साधना करेगा तो अपने अंदर की कमियां पता चलती हैं, पहचान पाएगा अपने अंदर की कमियों को, तो वो हम्बल होता जाता है, उनके रिलेशनशिप में सुधार होता है, चाहे वो रिलेशनशिप वर्क प्लेस पे हो या फैमिली में हो, है ना। तो साधना से हम एक तो पॉजिटिव रहते हैं, दूसरा हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ का डायरेक्ट लिंक हमारी मेंटल हेल्थ से। साधना से हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, मेंटल हेल्थ बेटर हो जाएगी, आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो सारे हेल्थ के कंपोनेंट ऑटोमेटिकली सुधरते जाएंगे, है ना। तो अगर आप हेल्दी होंगे, इनर लेवल पर पीसफुल हो, शांत रहते हो, हम्बल हो गए हो, अपने विकारों को इम्प्रूव करने में लगे रहते हो, और आपको दूसरों में भी अच्छाइयां दिखने शुरू हो जाती हैं साधना करते रहने से, है ना, दूसरों की अच्छाइयां देखकर उनकी प्रशंसा करते हो और अपनी कमियों पर ध्यान देते हो, तो सारे रिश्ते अपने आप ही सुधर जाएंगे ना। करते थे हम उल्टा, अपनी प्रशंसा और दूसरों की कमियों पर ध्यान करना है उल्टा, अपनी बुराइयों पे ध्यान देना और दूसरों की अच्छाइयों पे ध्यान देना, अपने आप ही रिश्ते बेटर हो जाएंगे ना फिर, और विल पावर बढ़ जाती है जो आपको लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर हेल्प करती है। जैसे दुनिया में लोग सोचते हैं ना कि मैंने आज 10 काम करने हैं, लेकिन रात तक 2 भी नहीं होते, लेकिन जब आप साधना करते रहते हो ना फ्रेंड्स, तो फोकस लेवल बढ़ जाता है, तो कथनी और करने का गैप घट जाता है। आपको लगता है कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी नेगेटिव हैबिट है, तो मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूं। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंट हो जाओगे आप। ओवरऑल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मतलब है आपके अंदर की डिवाइन क्वालिटीज बाहर आएंगी, दिव्य गुण बाहर आएंगे, और जो हमारी जो आसुरी प्रवृत्तियां है ना वो घटना शुरू हो जाएंगी परसेंटेज में। माफ करना सीखोगे, ईर्ष्या से मुक्ति मिलेगी, द्वेष से मुक्ति मिलेगी, कंपैरिजन से मुक्ति मिलेगी। जो सत्संग के लाभ है ना फ्रेंड्स, वही साधना के हैं, क्योंकि ये सारे कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, सबके लाभ एक ही जैसे हैं, है ना। दिव्य गुण बढ़ेंगे, माइंड पर कंट्रोल आएगा, मन शांत होगा, आंतरिक आनंद को जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसको हम अनुभव करना शुरू कर देंगे, हमारा प्रभु की भक्ति में मन लगना शुरू हो जाएगा, आनंद आना शुरू हो जाएगा। जो बातें हम स्क्रिप्चर्स में पढ़ते थे, साधना करते रहने से सब समझ आना शुरू हो जाता है। ऐसे हमें जो सारी बातें सिर के ऊपर से निकलती थी ना, जब साधना करते रहेंगे तो फालतू जो अंदर की गंदगी है वो निकलेगी ना। तो जो अच्छी बातें हैं, भगवद गीता की जो बातें अभी समझ नहीं आ रही आएंगी आपको, है ना, या नहीं आ रही होंगी अभी सत्संग का जो लग रहे हैं, कुछ बातें समझ आ रही होंगी, कुछ नहीं आ रही होंगी, तो वो अपने आप ही समझ आना शुरू हो जाती है जो आप प्रैक्टिसेस करते हो। पहले हमें भी कुछ भी समझ नहीं आता था, ये थोड़ी मैं पहले कई बार बताती रहती हूँ, जब मैं भगवद गीता सुनती थी मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि इतना दुनियादारी में हमने उलझे होते हैं, अपना मन को इतना दुनियादारी में हमने लगाया होता है ना कि वो मन लगता ही नहीं है भगवान की बातों में, मन तो लग जाता है, समझ नहीं आता है। मुझे समझ नहीं आता था, मैंने देखा सिर के ऊपर से जाता था सारा कि क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिस से फ्रेंड्स, जब मैं नित्य निरंतर लगी रही कि मुझे सुननी है भगवद गीता, नोट्स बनाती थी, बार बार सुनती थी, एक श्लोक को पता नहीं कितनी बार सुनती थी, तो फिर सब कुछ समझ आने लग जाता है ना। तो साधना से इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है फ्रेंड्स, सिंपल बात है, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपको अपने आप में कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है, अपनी कमियों से कैसे डील करना है, नेगेटिविटी से कैसे डील करना है, आप उस स्ट्रेंथ के द्वारा कर पाओगे बहुत इजीली। जो आप चाहते थे ना मेरे में ये क्वालिटी होनी चाहिए, तो आप फिर इजीली उसको कर पाओगे, है ना। देखो फ्रेंड, हम सबको लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, हम खुशी ढूंढ रहे हैं बाहर, है ना। और आप साधना को अगर अपने जीवन में अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए, चाहे थोड़ा थोड़ा कीजिए, तो आपके अंदर जो असीम प्रतिभा है ना, असीम पोटेंशियल होती है हमारे अंदर फ्रेंड्स, है ना। तो भगवत कृपा से जो दिव्य गुण है ना, वो अपने आप बाहर निकल कर आएंगे, आपके व्यक्तित्व में अद्भुत निखार आएगा, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। और मिलजुल कर हम एक प्यारे सी फैमिली का, प्यारे से समाज का निर्माण कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर हर मन मंदिर एवरीवन, हरी बोल हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स अब रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा, आप शेयर कर सकते हो। हरी बोल।
हरी हरी बोल जी।
हाँ जी हाँ जी मम्मा, बात कर लो।
हाँ जी मोना जी, आज का आपका सत्संग सच में बहुत ही दिव्य, मैं बोलती हूँ कि ये साधना का टॉपिक मेरा बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि जब हम भक्ति के रास्ते पे चले हैं ना, तो मेन फोकस हमारा साधना पे, कि सब कुछ लाइफ में जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन साधना करने से हमारे अंदर होता है ना कि अब क्या बोलूं, कि साधना करने से हमारे पॉजिटिविटी आती है। जैसे साधना का मतलब है तपस्या, कि जब कोई भी अपने गोल की तरफ फोकस करता है तो उसे तपस्या करनी पड़ती है, और वो तपस्या है साधना। साधना जैसे बोलते हैं, साधना चार पांच तरह से हम कर सकते हैं, माला करने से, फास्टिंग करने से, परमात्मा को भोग लगाने से, और आरती करने से। तो सबसे इजी वे है परमात्मा से जुड़ने के लिए, सबसे इजी वे है नाम जाप। जब हम माला करते हैं तो 7-8 मिनट लगते हैं, तो उस टाइम में हमें बहुत ही शांति मिलती है। तो माला जैसे दो तरह की बोलते हैं, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। तो अनस्ट्रक्चर में जैसे हम चलते फिरते सारा दिन माला करते रहते हैं, भगवान का नाम देते रहते हैं, तो हमें अंदर से बहुत ही शांति मिलती है। सच कहूं, जब कोई किचन में भी काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई आया किसी से बात कर रहे हैं, तो मन में तो चलती रहती है, तो कोई भी बोलते ना एक्टिविटी हावी नहीं होती। और जो स्ट्रक्चर चैंटिंग है उसमें हमें थोड़ा सा ना टाइम बनाना पड़ता है। सच कहूं पहले मैं भी अनस्ट्रक्चर बहुत करती थी और स्ट्रक्चर चैंटिंग नहीं करती थी। तो मैंने क्वेश्चन किया था कि एक बार सत्संग में, तो कि मैं करती हूँ ऐसे चलते फिरते सारा दिन, लेकिन मैं माला नहीं कर पा। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि चलते फिरते तो आप सारा दिन करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रक्चर चैंटिंग जरूर करनी चाहिए, इससे आपकी प्रोग्रेस होती है। और जब हम स्ट्रक्चर माला करते हैं तो हमें थोड़ा टाइम बनाते हैं, हमें एक जगह बैठ के करते हैं, और इसको करने के बहुत ही बेनिफिट है, लाभ मिलते हमें। सच्ची करूं, अब जब मैं माला कर रही होती हूँ स्ट्रक्चर, तो ऐसे लगता है कि प्रभु की प्रेजेंस फील होना शुरू होती है। ऐसे जब हम अनस्ट्रक्चर करते चलते फिरते तो कई बार मन भटकता है, तो इसमें मन नहीं भटकता हमारा। जब माला करते हैं तो हमारा ध्यान माला पर होता है, और हमारा मन जो होता है ना हमारे कंट्रोल में आता है, हमारा फोकस भी बढ़ता है, और जो माला करने से जो हमारी सोल होती है वो रिचार्ज होती है, और नेगेटिविटी से दूर होते हैं, और क्योंकि हमारा मन उस वक्त पूरी पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। तो स्ट्रक्चर चैंटिंग जरूर करनी चाहिए। तो जैसे फास्टिंग करते हैं हम, तो इसके भी हमें बहुत बेनिफिट है, हमें फिजिकल बेनिफिट बहुत है, क्योंकि इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वो ठीक हो जाता है, और हमारे सेंसेस भी कंट्रोल में आते हैं। लेकिन उस दिन जब हमारा फास्टिंग होता है तो उस दिन हमारा ध्यान खाने की तरफ नहीं होता है, कि ऐसे लगता है कि हम थोड़ी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ाएं, तो उस दिन हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी बढ़ती है, और हम इंजॉय भी बहुत करते हैं, क्यों, और अंदर से बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल फ्री फील करते हैं। और भोग, जैसे आपने बताया, तो जब से हमने भोग लगाना सीखा है भगवत गीता का अध्ययन करने से, क्योंकि पहले तो लगाते थे सुबह प्रसाद थोड़ा सा लगा दिया, तो ऐसे प्रॉपर भोग नहीं लगाते थे, तो ये हमने भगवत गीता का अध्ययन करने से सीखा कि हमें प्रभु का थैंक्स करना है, कि प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ है, और हमें हर चीज प्रभु को अर्पित करके ही ग्रहण करनी है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो हमारा जो भोग होता है वो प्रसाद बन जाता है, और जब वो प्रसाद हम सब खाते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। और जब हमें होता है कि हमने भोग लगाना है परमात्मा को, तो हम अच्छे मन से खाना बनाते हैं, तो इससे जो होता है ना वो खाने में बहुत अच्छी वाइब्रेशन आती है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम पेड़ की जड़ों को पानी नहीं देंगे, है ना, जब पानी नहीं देंगे पेड़ की जड़ों को तो वो तो पत्ते नहीं आएंगे ना, पत्ते नहीं आएंगे तो हमें फल नहीं मिलेगा। तो हमारी जड़े जो है वो परमात्मा है, तो अगर हम परमात्मा को भोग नहीं लगाएंगे तो परमात्मा को तो आनंद नहीं आएगा, परमात्मा को आनंद नहीं आएगा तो हमें कैसे मिलेगा। जब हम भोग लगाते हैं परमात्मा को तो परमात्मा खुश होते हैं हमारे से, तो हमें भी परमानेंट हैप्पीनेस मिलती है। ये सब साधना करने से ये सब चीजें हमारे अंदर डेवलप हुई हैं। और आरती, पहले जोत जलाई, शाम को भी जोत जलाई, ठीक है, धूप जोत जलाई, माथा टेक कर चले आए, लेकिन अब है सुबह भी जाते हैं शाम को भी जाते हैं तो आरती करते हैं। और आरती करते हैं तो इससे बोलते हैं ना कि बहुत वाइब्रेशन सारे घर में बहुत अच्छी आती है। सत्संग सुनना है और हमें इन सारी बातों को अपने धीरे धीरे अपने लाइफ में उतारना है कि हमें क्या करना है, साधना कैसे करनी है। जैसे नाम जाप आपने बताया आपने कि इसके बहुत ही फायदे हैं नाम जाप के। जब हम नाम जाप करते हैं ना तो हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। हम तो माया जाल में उलझे हुए हैं और नाम जाप, प्रभु का नाम, जब हम नाम जाप करते हैं तो हम इस माया जाल से निकल पाते हैं। और प्रभु का नाम हम अगर जपते रहेंगे तो शायद हम ईश्वर के धाम को भी प्राप्त करेंगे, और जो हम जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे हुए हैं उससे शायद हम छूट जाएंगे, और हमें अपनी असली पहचान भी हो पाएगी कि हमारा परमात्मा के साथ रिलेशन है क्या, संतान का है, मित्र का है कि गुरु का है। सच कहूं, मैंने जब से लड्डू गोपाल अपने घर में स्थापित किए हैं तो मैंने उनके साथ माँ बेटे का रिलेशन बनाया। आज भी जब भी मैं पूजा करने जाती हूँ ना तो प्रणाम करती हूँ सबको, लेकिन अपने लड्डू गोपाल को ऐसे करती हूँ जैसे अपने छोटे बच्चे को प्यार नहीं करता वैसे करती हूँ। तो ये सब चीजें साधना करने से, भगवान का नाम जाप करने से मेरे अंदर डेवलप हुई है, और मैंने श्रीमद भगवत गीता का अध्ययन करने से आपसे सीखी है। इसके लिए मोना जी आपका बहुत बहुत थैंक्स। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू उमा, बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, और मुझसे नहीं सीखी पहले बातों के, भगवत गीता से सीखी है ना, कि भगवत गीता में जो भगवान हमें गाइड कर रहे हैं मैं आपको वही बोलती हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती, है ना। हम लोग सब भगवत गीता से भगवान के इंस्ट्रक्शन सुन रहे हैं और उसको हम सब मिलके अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में, है ना।
और तो आप हो ना,
मैं गुरु नहीं हूँ, आप मेरे गुरु हो, उल्टा बोल रहे हो। और भगवत गीता पढ़ना वो भगवान ने, शायद आपको कुछ होगा हमारे पुराने जन्म में, मैंने आपसे सुनी होगी पिछली बार, इस बार मैं आप मेरे से सुन रहे हो, बस इतना फर्क है। फ्रेंड्स देखो, सत्संग तो हम सुनते हैं, है ना, सत्संग सुन लिया, अब उसको जीवन में अपनाना कैसे, है ना, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो उन एफर्ट्स का नाम ही साधना है, है ना। दुनियादारी में भी हम कुछ करना है, कहीं जाना है, तो उसके लिए तो एफर्ट्स करने पड़ते हैं ना, हम अच्छे से पहले नहाएंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे, है ना, फिर कोई ट्रेवल करने के लिए कोई गाड़ी लेंगे, तब तो हम किसी के घर जाएंगे। मान लो अगर डिस्टेंस वाला रास्ता है, मतलब आप बड़े शहरों में रहते हो तो आपको कोई स्कूटी पे या गाड़ी के थ्रू जाना पड़ता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं जब हम भक्ति में होते हैं ना, हमें लगता है कि बस कुछ नहीं करना है हमें, है ना, बस वो दो टाइम की भक्ति कर ली मन गणत वाली और बाकी पूरा टाइम अपना मन गणत जीवन जिया, उसका कुछ फायदा नहीं है फ्रेंड, कुछ नहीं मिलने वाला है उस भक्ति से, और भक्ति नहीं की और जो वो वाली भक्ति करने में कोई डिफरेंस नहीं है, है ना। तो भगवत गीता एक्चुअली हमें भगवान से भाव लगाना सिखाती है, है ना, भगवान से एक रिलेशन बनाती है, है ना। जैसे कि आप बता रहे हो कि मैंने एक माँ बेटे का रिलेशन डेवलप किया है ना, आप अपने फादर का रिश्ता बना सकते हो उनके साथ, आप भाई का रिश्ता बना सकते हो, मतलब भगवान से भाव लगाना हमें सिखाती है भगवत गीता। जो सत्संग से हमने चीजें सीखी हैं उनको जब हम अप्लाई करेंगे ना लाइफ में फ्रेंड्स, तभी वो चेंजेस आएंगे जिंदगी में। अगर हम करेंगे नहीं कुछ, सिर्फ सुनते रहेंगे, सुनते रहने से भी हृदय परिवर्तन हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। सुनते रहने से अच्छी बातें जब हम सुनते रहते हैं तो हृदय में परिवर्तन होना ही होना है। लेकिन अब उसके नेक्स्ट लेवल पे भी जाना है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अगर करनी है हमें, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी साधना को जो भी आपको अच्छा लगता है ना, जो भी कितनी सारी वैरायटी बताई उनमें से आप सारी चीजों को भी अडॉप्ट कर सकते हो या कुछ चीजों को धीरे धीरे करके अडॉप्ट कर सकते हो, है ना। जैसे एक नाम जाप से शुरू कर लो, भोग लगाने से शुरू कर दो कि चलो मैं मॉर्निंग में भोग लगाया करूंगी। अगर आप 3 टाइम लगा सकते हो तो 3 टाइम लगा सकते हो। तो धीरे धीरे इन चीजों को अडॉप्ट करोगे ना तो आपको खुद ही मजा आएगा, जैसे हम लोगों को आ रहा है ना। थैंक यू सो मच मम्मा। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरी बोल।
हरी हरी बोल एवरीवन।
हाँ जी पूजा जी।
थैंक यू मोना जी, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक भी हमारे डेली लाइफ के लिए काफी इम्पोर्टेंट भी था और इंटरेस्टिंग भी थे। जैसे आज आपने हमें टॉपिक करवाया साधना, साधना से मेरी ये लर्निंग बनी है डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन वे में प्रभु की पूजा अर्चना करना और उनसे कनेक्शन और उनसे कनेक्ट होना, ए काइंड ऑफ अवर जर्नी फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। डिसिप्लिन में रहकर मतलब अपने मन को कंट्रोल करके प्रभु की तरफ डेडिकेट होना। हम जितना अपने मन को कंट्रोल करके प्योर डेडिकेशन से प्रभु की साधना करेंगे उतना ही हम प्रभु से कनेक्ट होते जाएंगे। हम जितनी ज्यादा साधना करेंगे उतना ही हमारा मन और दिमाग साफ होता जाएगा और हम प्रभु की ओर अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। आपने जैसे कुछ हमें बताए साधना करने के कुछ टाइप्स, जैसे चैंटिंग, भोग लगाना, फास्टिंग। मैं अपने बारे में बताती हूँ, जैसे हमारे जो न्यू डेब्यूटीज जुड़े हैं उनके लिए मैं बताती हूँ, बाकी तो सबको पता है कि मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के नाम पर मैं कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं। बट जब से मोना दी से मेरी बात हुई, मैं इनसे जुड़ी, तो उन्होंने मुझे कुछ बोला कि तुम करते नहीं हो या ये सब क्या करो। थोड़ा मुझे मतलब टफ लगता था कि जैसे भोग लगाना है यार, हम तो प्याज लहसुन यूज करते हैं, मैं कैसे भोग लगाऊंगी, क्या खिलाऊंगी उनको, उनका कैसे वो करूंगी। बट लेकिन जैसे मोना दी ने अपने बारे में बताया कि जैसे जैसे वो सुनते थे या जो भी उनको बताया जाता था वो वैसा करते थे। मेरे साथ भी सेम था, जैसे जैसे हमें मोना दी ने गाइड करा, जैसे जैसे हम उन्होंने हमें बताया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सब मैंने बहुत कुछ तो नहीं बट कुछ एक्टिविटीज मैंने जरूर करी। जैसे मैंने मंदिर जाना स्टार्ट करा, सत्संग में जाना, हमारे मंदिर में सत्संग होता है, वहां पे जाना स्टार्ट करा, चैंटिंग करना, लड्डू गोपाल को 3 टाइम का भोग लगाना। जैसे पहले मैं प्याज लहसुन यूज करती थी तो मैं उनको जैसे मीठी रोटी या कुछ भी मीठा बनाकर उनको खिला देती थी। तो चैंटिंग करना, मंदिर जाना, भोग लगाना, उनको लड्डू गोपाल की सेवा करना, वो मेरे लिए ना एक अजीब अजीब कह लो या मैं प्रॉपर वर्ड नहीं है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है ना, वो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि मैं प्रॉपर उनसे बातें करती हूँ, उनको स्नान करवाती हूँ, उनके लिए नए नए कपड़े लेके आती हूँ। जैसे कभी सिटी जाना स्पेशल उनके लिए, मेरे राधे कृष्णा है उनकी भी मैं सेवा करती हूँ, उनके लिए मैंने इतना स्टॉक इकट्ठा कर लिया है कि उनको मेरे पास जगह भी कम पड़ जाती कि मैं उनका इतना सारा स्टॉक रखूं, कहां पे मिक्स हो जाता है मेरे वस्त्र जो उनके मैं लेके आई, उनकी ड्रेसेस, लड्डू गोपाल के लिए ड्रेसेस मेरे पास ऑलरेडी बहुत है बट मेरा मन करता है मैं और लेके आऊं। जैसे हम लोग अपने बच्चों के लिए या अपने लिए शॉपिंग करते हैं, मैं प्रॉपर उनके लिए शॉपिंग करती हूँ। जैसे उनके लिए बेड लाया, पिलोज, बिस्तर बनवाया उनके लिए, मतलब कि एक अजीब एक्सपीरियंस है, मैं बता इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। लेकिन एक नहीं, इससे एक हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस। जैसे हम लोग जैसे शॉपिंग करते हैं ना, हमारी वो खुशी कितने टाइम की होती है? थोड़े टाइम की, किसी के साथ गॉसिप कर ली थोड़े टाइम, वो लेकिन वो इंटरनल नहीं होती। लेकिन जो मैं लड्डू गोपाल के साथ बातें करती हूँ या उनकी जो सेवा करती हूँ, उससे ना एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है। एक कहते हैं कि स्टार्टिंग में लगता है कि ये सब टफ है, हम कैसे करेंगे, बट जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो ये खुद ब खुद हमारी एक डेली लाइफ की ना एक रूटीन बन जाती है कि नहीं हमने पहले उठना है उनको, हम खुद जैसे हम उठते स्नान करते हैं उनको करवाना है, उनको सुलाना है, उठाना है, खिलाना है, उनको तैयार करना है, ये एक हमारी हैबिट बन जाती है। हमें फिर वो काम नहीं लगता, हम लगता है कि नहीं हम ये उनके साथ हमारा, जैसे हम अपने बच्चों के साथ, जैसे अगर हम अपने बच्चों को कुछ कर रहे हैं तो हमें लगता, हम नहीं करते नहीं हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा कर्म है कि हमने बच्चों की वो करनी है। वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल के साथ भी जब कनेक्शन बन जाता है ना, जैसे मैं कभी कभी बातें करती हूँ ना, मेरे बच्चे आगे से सुनते हैं, मम्मा आप ऐसे बातें कर रहे हो जैसे वो सुन रहे हैं आपकी बातें। मैंने कहा वो सुनते हैं और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे उनके जवाब भी मिलते हैं। मैं कुछ भी उनके लिए नया लेके आती हूँ तो मैं देखो ये मैंने आपके लिए मंगवाया है या मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आपको पसंद आया नहीं आया, जैसे उनसे बातें करना, जैसे छोटे बच्चे के साथ आप लोग बातें करते हो, मैं उनको वैसे खिलाती हूँ पिलाती हूँ। तो मतलब कि ये आपको जैसे मेरे न्यू डिवोटीज के साथ है कि वो जुड़े रहेंगे, सुनते रहेंगे निरंतर, ये सब कोशिश करें, जैसे जैसे वो कोशिश करेंगे ना, उनका बस ये सोचना ही उनके लिए इनफ हो जाए कि हमने ये करना है, तो वो ये सब करना भी शुरू हो जाएंगे और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं जब लड्डू गोपाल को या राधे कृष्ण को भोग भी लगाती हूँ ना, तो बिलीव मी मैं प्याज लहसुन बिल्कुल क्विट कर दिया है। कुछ चीजें एक दो होती हैं जो बिना अनियन के नहीं बनती, तो वो तो वैसे भी मेरे लड्डू को खाते नहीं है, क्योंकि मैगी वगैरह होती है जो बच्चों को पसंद होती, तो वो तो लड्डू खाते भी नहीं है, तो वो मैं उसमें मैं अनियन डालती हूँ। अदरवाइज मेरी ऑलमोस्ट सारी कुकिंग मेरी बिना अनियन और गार्लिक के होती है, ताकि मैं अपने लड्डू को राधे कृष्ण को प्रॉपर 3 टाइम का खाना खिला सकूँ। तो ये मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे लिए एक मेरा कर्म है, एक उनके साथ कनेक्शन है, एक मेरा प्यार है, एक मेरा बॉन्ड है जो मैं फील करती हूँ, मैं करती हूँ। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत ही आनंद आ रहा था पूजा जी आपकी बातें सुन के, ना से लगता आप बोलते रहो लड्डू गोपाल के बातें और हम सुनते रहे, गूज़बम्स आ रहे थे मुझे, सच में बहुत ही आनंद आ रहा था कि जैसे आपने कनेक्शन बना लिया ना, तो मुझे आपका वही फोन कॉल याद आ रहा है कि जब ये जुड़े थे ना, मैं नए डिवोटीज से बात करना चाहती हूँ कि 2020 में जुड़े थे हम लोग, सब भगवद गीता पढ़ने लगे सुनने लगे, तो 5-6 महीने बाद पूजा जी भी जुड़ गए थे, है ना। तो उसके 5-6 महीने बाद और आगे 5-6 महीने बाद इनका कॉल आता है मुझे, अब आप बोलते हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने को, तो मेरे तो हस्बैंड करते हैं, तो फिर मेरे को क्यों करना है, मैं फिर आपका क्या करते हो, बोलते नहीं मैं कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब ऑफिस जाते हैं तो वो जला के जाते हैं। तो ये वहां उस स्टेज से इस स्टेज में आना बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, है ना। तो वो किसने प्रैक्टिस की, किसने अपने मन को डिसिप्लिन किया, वो कि हुआ कैसे, वो बात भी उस दिन साधना की हो रही थी कि मेरे हस्बैंड करते हैं, मुझे क्या जरूरत है करने की। तो मैं बोला आपके हस्बैंड खाना खाते हैं, आपको भी जरूरत है खाना खाने की, आपके हस्बैंड सांसें लेते हैं, आपको क्या जरूरत है सांसें लेने की, आपके हस्बैंड घूम आए तो आपने घूम लिया होगा, है ना। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, अरे हर इंडिविजुअल की अपनी इंडिविजुअल यात्रा है, है ना। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड को अपने हिस्से का खुद ही करना है कुछ भी। हर व्यक्ति अपने पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें जो कर रहा है वो खुद अपने लिए कर रहा है ना, चाहे भगवान से कनेक्शन बनाना है या कोई भी नेगेटिव चीज करना है, वो खुद अपने लिए कर रहा है ना, वो किसी दूसरे के लिए, दूसरे का जीवन थोड़ी हम जीते हैं, हम अपना जीवन जीते हैं ना। अगर हम खुश हैं तो हम खुश हैं, अगर हम दुखी हैं तो हम दुखी हैं, है ना। तो देखो वहां से लेकर की आजकल की आज की जर्नी इनकी ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए होंगे पूजा जी को हमारे साथ, है ना। तो ये थोड़ी चेंजेस नहीं है, बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन्होंने अडॉप्ट की हैं, थोड़ी थोड़ी परसेंटेज में, ये थोड़ी एक ही दिन में सब कुछ कर लिया होगा, प्याज लहसुन भी छोड़ दिया, एक ही दिन में इन्होंने नाम जप भी कर लिया होगा, एक ही दिन में इन्होंने मंदिर जाना भी शुरू हो गया, धीरे 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 चलते रहे चलते रहे चलते रहे, इंटरेस्ट बनने शुरू हुआ, है ना। तो जब करेंगे हम तो उसका फल भी मिलना फ्रेंड्स, वो हम ही उस आनंद को एक्सपीरियंस करेंगे ना जब हम करेंगे कुछ। अगर हम करेंगे ही नहीं, तो रेगुलरली हम सुनेंगे, आज सुन लिया फिर सुनना नहीं है, 10-10, 15-15 दिन, एक एक महीना नहीं आना, फिर कभी बीच से प्रकट हो गए, है ना। उससे कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड। एक्चुअली आपको बताऊं 2020 में जब मैं एक्चुअली सच में अब मैं बोलती हूँ भगवद गीता से मैं 2020 में ज्यादा जुड़ी, 2017 में मैं सिर्फ सुन रही थी, मैंने किया कुछ नहीं था जीवन में, अप्लाई नहीं किया था, सुनना बहुत अच्छा लग रहा था नो डाउट, उस वक्त मैं सिर्फ सुनने वाली दर्शक थी। लेकिन जब मैं 2020 में जुड़ी ना, तो जब मैं जो चीजें मैं मेरे को बोलती थी ना, मैं तो मुझे लगता था मैं बोलूंगी कैसे जो मैं खुद ही नहीं अप्लाई करती। भोग लगाना मैं बोलती थी तो मैं साथ में ये बोलती थी कि कभी कभी आप भोग लगा सकते हो, मैं ये कभी नहीं बोल पाती थी कि 3 टाइम भोग लगाओ आप, क्योंकि मैं खुद ही नहीं लगाती थी। जो चीजें मैं फिर खुद से करना शुरू हुई, पहले मुझे लगता था जो चीजें मैं बोल रही हूँ मुझे खुद करनी है, तब मैं बोलने के काबिल बनूंगी, मैं कैसे किसी को कुछ सिखा सकते हैं जब मैं खुद ही कुछ नहीं कर रही हूँ। ऑलमोस्ट क्या सारी चीजें मैं वही बोलती हूँ फ्रेंड, जो चीजें मैंने भी अपने जीवन में उतारी। तो अगर हम ये सब चीजें सिर्फ सुनने तक ना रखें और हम इसको करें कि यार आज मुझे सत्संग में ये चीजें बहुत अच्छी लगी, है ना, मुझे नाम जप के बारे में सीख लिया मैंने, या मैंने भोग लगाने के बारे में सीखा, है ना। भोग के बारे में मैं आगे आगे आपको और बताऊंगी, मतलब डिफरेंट लेवल के एक्सपीरियंसेस है भोग लगाने के, है ना। परमात्मा के पास जाके तो देखो आप, उनके साथ एक भाव लगा के तो देखो, वही मजा आने वाला जो आज पूजा जी कह रही हैं, जो मम्मा कहते हैं, जो मैं कहती हूँ, वही मजा आने वाला है आपको भी। सेम भगवान कोई डिफरेंशिएट थोड़ी करते हैं कि नहीं पूजा जी के भगवान है वो आपके नहीं है, है ना। तो हमें ध्यान से सुनना है और उन चीजों को अपने जीवन में उतारना है फ्रेंड्स, तो अपने आप ही आप जीवन में परिवर्तन देखोगे, है ना। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया पूजा जी, बहुत ही आनंद आया हमें, थैंक यू सो मच पूजा जी। तो भजन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आज भजन की टर्न कुमत दीदी की है, तो कुमत जी आप अपना भजन गा सकते हो। हरि बोल।
आज श्री हरि से प्रार्थना, एक छोटी सी प्रार्थना। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। पकड़ लो हाथ बनवाई, धरी है पाप की गठड़ी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठड़ी, हमारे सिर पे ये भारी। भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल का कहे किसको सहारा, ना कोई देगा। दर्द दिल का कहे किसको सहारा, ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएंगे। खवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी।
हरी हरी
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत ही प्यारा भजन गाया मुझे आपने बहुत ही भाव से, बहुत ही सुंदर प्रार्थना थी, बहुत ही आनंद आया। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स अब प्रेयर्स कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, जय श्री राधे कृष्णा, हरी बोल।